कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्तिषे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमः। यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाति भाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो मेदो तं सर्वभूतहृदयम्। मुनिमानतोऽस्मि तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणन्ति। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अपनी अनंत कोटि श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित कर रहा हूँ। पश्चात अभी अभी मैं वृंदावन से मथुरा से इंग्लैंड में गया, वहाँ से सैन फ्रांसिस्को और अमेरिका के कैलिफोर्निया में पहाड़ों के बीच में बसे हुए बड़े ही रम्य और सुंदर स्थान वेयर में गया, जहाँ लोग उसको नया वृंदावन कहते हैं, ब्रज कहते हैं, न्यू ब्रज। सब जगहों में लोगों ने बड़ा स्वागत किया, आदर किया। भारतीय संस्कृति एक ऐसी उच्च शिक्षा प्रणाली है अब विश्व यह अनुभव करने लगा है कि उन वैदिक जो प्रणाली है उसके बिना जगत में सुख और शांति होना असंभव है। आज के युग में जहां सब कुछ अर्थ के ऊपर में निर्भर करता है, सब लोग सुख चाहते हैं, कोई भी दुख नहीं चाहता है। ठीक है, कोई भी दुख नहीं चाहता, किंतु दुख तो जरूर आता है। सुख के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, दुख बिना बुलाया आता है। कौन चाहता है कि बुढ़ापा आए, और ऐसा कौन है जिसको बुढ़ापा नहीं आती। अभी गोल मटोल बड़े सुंदर चेहरे हैं, सुंदर सुंदर चिकने गाल हैं, लंबे लंबे गुच्छ वाले केश हैं, शरीर पर बड़ी रौनक है मुख पर। कुछ दिनों के बाद में जो बुढ़ापा आएगी, युवावस्था ढल जाएगी, तो यही शरीर कोई नहीं पूछेगा, केस पक जाएंगे, आंखों में रोशनी कम हो जाएगी, दांत टूट जाएंगे, हजम नहीं होगा, तरह तरह की बीमारियां आएंगी, और अंत में ही शरीर को छोड़ देना पड़ेगा। ऐसा कौन है जो दुख चाहता हो, कोई नहीं, किंतु फिर भी दुख आएगा, जोर जबरदस्ती आता है। ऐसे कौन है जिनको जीवन में समस्याएं नहीं है, विशेष करके पाश्चात्य देशों में बहुत तरह की समस्याएं हैं। आज हम देखते हैं विश्व में बहुत वैज्ञानिक उन्नति हुई है, इसीलिए हम अपने देश भारत को छोड़कर यहाँ पर धन कमाने के लिए, सुखी बनने के लिए यहाँ आए। विज्ञान ने इतनी उन्नति की है कि एक आदमी का दिमाग फिर सिर सड़ गया है, नया प्रत्यारोपण कर देते हैं, नया दे देते हैं, हृदय का यंत्र खराब हो गया है उसको बदल देते हैं। केवल यही नहीं, रसोई घर से लेकर विज्ञान ने सर्वत्र उन्नति की। आज हम पृथ्वी के एक छोर से दूसरी छोर मन की गति से चलने वाले विमानों के द्वारा पहुंच जाते हैं। जो काम वहां जाने से होता है, यहीं पर हम कंप्यूटर इत्यादि की सहायता से यहाँ पर बैठे होते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति कैसा बोल रहा है, हम भारत में बैठे हुए देखते हैं कि कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है। अभी क्रिकेट का खेल कहीं हो रहा है ठीक आपके विपरीत ऑस्ट्रेलिया में, और यहीं से बैठे हुए सब आप देख रहे हैं। इस तरह से पृथ्वी एक मुट्ठी में आ गई, अब दूर नहीं रही, जहां चाहते हैं वहां पहुंच जाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं। होने पर भी विज्ञान का ये कुप्रभाव हुआ, पहले हम लोगों के पास में कुछ नहीं था, पैदल चलते थे, रेलगाड़ियां भी नहीं थी, साइकिल भी नहीं थी, बैलगाड़ियां थी, किंतु हमारी आवश्यकताएं बहुत कम थी। उसमें में पति और पत्नी का हृदय एक रहता था, अलग अलग अकाउंट नहीं होते थे। आजकल पांच बेटे और बेटियां हैं तो उनका अलग अकाउंट, स्त्री का अलग, पति का अलग, बाप का अलग, बेटा का अलग, किसी पर किसी का विश्वास नहीं। और यही कारण है कि पाश्चात्य देशों में अधिकतर और हमारे भारतवर्ष में भी अब डाइवोर्स इतने हो गए हैं कि एक जीवन में 10 बार 15 बार पति और पत्नी का बदलना कोई बड़ी भारी बात नहीं और कोई सुखी नहीं। अब बाप बेटे का हृदय भी एक नहीं रहा। एक फ्लैट पर 10 परिवार रहते हैं, उनको कोई जानता नहीं कि कहाँ का रहने वाले क्या हैं, कोई हमदर्दी नहीं परस्पर। आज हृदय बहुत कलकत्ते में देखते हैं, बॉम्बे में देखते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं वहां देखते हैं, सड़क पर आदमियों की भीड़ चल रही, लाखों लोग, और एक आदमी गिर गया मर रहा है, उसकी सहायता के लिए कोई भी नहीं, प्रेम नहीं रहा। इसलिए जो की समस्या है ये प्रेम, पहले जो प्रेम था आज की सभ्यता में वैज्ञानिक उन्नति के द्वारा वो प्रेम कहां न जाने चला गया। आत्मा का धर्म जो था पहले उन लोगों का हृदय बड़ा सरल कोमल होता था, आजकल वह हृदय की कोमलता नहीं रही। इसलिए जगत में तरह तरह की समस्याएं आ रही, एक नहीं लाखों प्रकार की समस्याएं आ रही। कैसे हमारे हृदय में प्रेम हो, यदि यह प्रेम आ जाए किसी प्रकार से समस्त समस्याओं का हो जाएगा। उस समय में सभी कुछ अपना दे देगा दूसरों को और दूसरे सभी उसको दे देंगे। यह प्रेम कैसे आएगा, ये समस्या आज की नहीं है, जब से ये सृष्टि चल रही है तभी से है। हिरण्यकश्यप हिरण्यक्ष को देखिए, अपने बल पर विश्व को कंट्रोल करने की चेष्टा की, वायु चंद्र आकाश को भी अपने कंट्रोल में कर लिया, सारे पृथ्वी का राज्य भी लिया, सुखी रह सका नहीं रह सका, क्योंकि वो प्रेम करना नहीं जानता था। और उसी का बेटा प्रहलाद महाराज सबसे प्रेम करता था। इसलिए आज से 500 वर्ष पहले वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, प्रेम का संदेश दिया, यदि सुखी रहना चाहते हो इस जीवन में, पर जीवन में भी सुखी रहना चाहते हो, तो भगवान का स्मरण करो, उसे कभी मत भूलो, सब काम करो उसे मत भूलो और उसका सब समय स्मरण करो। कभी मत भूलो, यदि यह काम हो जाता है तो सब काम हो जाएगा, जीवन उसका सुखी हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों? उसको स्मरण करने की जरूरत क्या है? रुपया कमाएंगे, सुंदर पत्नी से विवाह करेंगे, सुंदर पति से विवाह करेंगे, बच्चे होंगे, बड़े सुख से रहेंगे, वो बच्चे तुम्हें नहीं मानेंगे। आज की समस्या है जहां थोड़े से बच्चे बड़े हो गए, माता पिता को छोड़ करके अपना देखते हैं, आपके पास में नहीं रहेंगे। क्यों? शास्त्र कह रहे हैं, हमारे वेद उपनिषद समस्त कह रहे हैं, हमारे सभी आचार्य भक्त लोग कह रहे हैं, हम भगवान के अंश हैं। ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। मानो और न मानो, तुम्हारे मानने और नहीं मानने से कुछ नहीं होता है। यह चिरातन सत्य है, परम सत्य है कि हम भगवान के अंश हैं, हम चेतन हैं, सब समय सुखी रहती हैं, किंतु अपने ओरिजिन को, भगवान को भूलने से हमारी ये दुर्दशा है। हम कभी जन्मते हैं, कभी मरते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी सुखी होते हैं, कभी देवता होकर के जन्म लेते हैं, कभी पशु पक्षी कीट पतंग होकर के जन्म ले रहे हैं, सब जीवन में सुख होते हैं किंतु सुख नहीं। क्यों? जब तक अपने ओरिजिन को, जहां से हम निकले हैं, उसको याद ना करोगे, उससे नहीं मिलोगे, तब तक सुख शांति नहीं हो सकती। एक उदाहरण ले लो, एक पत्थर साधारण सा लिया, एक मिट्टी का ढेला लिया, पत्थर आकाश में खूब जोर से फेंक दो, फेंक तो दिया खूब जोर से, ऊपर गया, किंतु ऊपर में कितनी देर रहेगा, फिर क्या होगा? होगा क्या? नीचे गिर जाएगा। क्यों नीचे गिर जाएगा? आग जलाओ, आग की फ्लेम किधर जाएगी, नीचे जाएगी कि ऊपर? क्यों? एक बैलून छोड़ो, उसमें हवा देकर बैलून छोड़ो, तो वो किधर आएगा? पृथ्वी की तरफ न कहां जाएगा, ऊपर में क्यों जाता है? पानी ले लो थोड़ा सा, गिराओ, यदि थोड़े रूप में है तो वो वेपर होकर के उड़ जाएगा। कहां जाएगा वेपर होकर के? आकाश में, बादलों में मिलकर, फिर बर्फ करके, फिर वो किसी न किसी प्रकार से समुद्र में मिलेगा, जो उसका ओरिजिन है, जरूर जाएगा। थोड़ा सा पानी यहाँ गिराओ, यहाँ से नाली में गया, नाली में से कहीं बड़ी नाली में, वहां से बड़ी कई नदी में चला जाएगा, नदी से फिर समुद्र में मिल जाएगा, और फिर भेपर उठ होकर के फिर ऊपर जाएगा, इस तरह से घूमता रहता है। जब तक वो पानी पानी में नहीं मिलेगा, समुद्र में, अपने ओरिजिन में, वो कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। वो सुख करके जैसे तैसे उस पानी में मिलेगा ही। वैसे ये पत्थर आपने छोड़ा और ऊपर गया, फिर थोड़ी देर के बाद में पृथ्वी में मिल जाएगा, वहां पर स्थिर हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी मिट्टी का अंश है, पत्थर भी मिट्टी का ही अंश है, पानी पानी में मिलेगा ही, हवा हवा में मिलेगी, तब वो जाकर के स्थिर होगा। उसी तरह से हम भगवान के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम भगवान के अंश हैं। कौन से भगवान के अंश हैं? यह इसमें पांच चीजें हैं, ये पांचों चीजों में मिलेगी मरने के बाद में। शरीर में से मिट्टी निकल करके मिट्टी में मिलेगी, वायु वायु में मिल जाएगा, तेज सूर्य में मिल जाएगा, और शून्य आकाश में मिल जाएगा, वायु वायु में मिल जाएगी, और इसके बाद में मन बुद्धि अहंकार ये सब महत्त्व नाम का एक पदार्थ प्रकृति का है, उसमें मिल जाएगा। और आत्मा जब तक मुक्त नहीं होगी, तब तक ऐसे राउंड में कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी गंधर्व, कभी अपने अपने कर्मों से गाय, बैल, भैंस, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, लता। अभी मैं सिंगापुर गया था, वहां पर समुद्र के बीच में एक जगह पहाड़ों के ऊपर में उन्होंने एक प्रदर्शनी बना रखी है कोटि कोटि रुपयों की। उसमें लाखों प्रकार की मछलियों को देखा, लाख कोटि प्रकार की। तो हमारे यहाँ तो लिखा है कि जीव जलचर हैं वो कितने, 9 लाख प्रकार के। हमने तो देखा जैसे 9 लाख से भी अधिक प्रकार के हैं। यदि एक एक मछली के रूप में हम लोग गए तो करोड़ों वर्ष लग जाएगा। इसी तरह से पशु पक्षी कीट पतंग लाखों कोटि प्रकार के हैं। उसमें भ्रमण करना पड़ेगा जब तक कि आप ईश्वर से निमिल करके उनकी सेवा नहीं करेंगे। ये ध्रुव चीज है, अनुभव की हुई चीज है। इसलिए आप लोग अभी मरने के बाद में कहां जाएंगे कोई गारंटी नहीं, किंतु जो जानते हैं इस प्रक्रिया को, इस विज्ञान को, वो समझ जाएंगे ये कहां जाना है और कहां से आया है। वो समझ जाएगा ये कहां से आया है, इसका जीवन किस रूप में चल रहा है, इसको दुख होगा अगले जन्म में या कष्ट होगा, वो सब समझ जाता है यहाँ रखने से ही। रखने की भी जरूरत नहीं, वो देख करके बतला देगा। इसलिए जब तक कि कोई जीव जिसका ऑरिजिन ब्रह्म है, भगवान है, उसकी सेवा नहीं करेगा, उसको स्मरण नहीं करेगा, वो सुख शांति से नहीं रह सकता। भगवान 2, 10, 20, 50 नहीं है, एक है, उसी को भगवान कहिए, उसको परब्रह्म कहिए, उसको खुदा कहिए, अल्लाह कहिए, गॉड कहिए, एक ही का वो है सब कुछ प्रकाश, किंतु एक नहीं। ये भी समझना सहज नहीं है, है तो एक ही, उसका रूपांतर या प्रकाश है, किंतु जैसे एक उदाहरण देकर के समझाऊं, ये थोड़ा सा मुखबंद हो जाने के बाद में भागवत आरंभ करूंगा चाहता हूँ, किंतु ये भी जरूरी है जान लेना। तो जैसे बर्फ पानी है, पानी तो बर्फ है, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग परहैप्स एनी, वी विल ट्राई टू ट्रांसलेट इट आफ्टर वर्ल्ड। पानी बर्फ में कुछ अंतर नहीं है, पानी ही बर्फ के रूप में बदल गया है। और कुआसा होता है सवेरे में, फॉग अंधकार सा दिखता है, उसमें पानी की बहुत छोटी 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 बूंदियां होती हैं। तो ये तीनों चीजें एक ही है, पानी, बर्फ, फॉग, ये सब एक ही चीज है। किंतु पानी को बर्फ नहीं कह सकते, बर्फ को पानी नहीं कह सकते, फॉग को वो नहीं कह सकते, है तो एक ही चीज, रूपांतर एक का है। वैसे ही भगवान जो शब्द है या ब्रह्म जो शब्द है, जिसे जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय सब कुछ होता है, जो समस्त विश्व को कंट्रोल करता है, एक ही विश्व नहीं लाखों करोड़ों विश्व ऐसे हैं, और सबको वो कंट्रोल करता है, बड़ा दयालु है, सर्वशक्तिमान है, सब जगह व्याप्त रहने पर भी बड़ा सुंदर इसका एक चेहरा भी है, बहुत अद्भुत। यदि वो बंसी लेकर अपने अधरों पर मधुर मधुर बंसी बजाए और सुंदर उसकी छवि सामने हो, ऐसा जगत का कोई नहीं है जो मुग्ध न हो जाए, और फिर भी वो सर्वव्यापी भी है, उसी से जगत सृष्टि स्थिति और प्रलय इत्यादि हुआ। दूसरी तरफ में गॉड, GOD, एक ही तात्पर्य पर है, जी जनरेटर, ओ ऑपरेटर, और डी डिस्ट्रॉयर। और हमारे यहां भी जिसे जगत की सृष्टि हुई, जिसने पालन किया, और जिसके अंत में संहार होने, सब में उसी में समा जाते हैं, उसी को वो कहते हैं। किंतु ख्याल रखेंगे, इस गॉड का उल्टा भी कुछ है, जी ओ डी और यदि उलार दो तो देखो, जो इस भगवान को नहीं जानते वो ठीक डॉग है, इस चीज को ख्याल रखेंगे। इसलिए जगत का ओरिजिन वही प्रभु है, किंतु समय समय पर अपने रूप को विभिन्न रूपों में जगत के हित के लिए वो प्रकाश करता है। कभी कभी कोई लोग कहते हैं जैसे शिव पर ब्रह्म एक है, गीता इत्यादि में देखते हैं कि शिव इंद्र ब्रह्मा गणेश सूर्य इत्यादि जितने ये भगवान की विभूति है, भगवान नहीं है विभूति। इसलिए विभूति और भगवान बराबर नहीं है, यहीं पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है तो एक ही चीज, ऐसे छुओ और ऐसे छुओ अभी भी पूर्वक हो जाता है। यदि भगवान को नहीं मान करके उनकी विभूति को लें केवल और उनको छोड़ दें, वो जीरो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? एक रखो उसके बाद में एक जीरो दो तो दस हो जाएगा, एक रखो फिर एक और शून्य दो तो एक सौ हो जाएगा, सौ दस दस मान बढ़ता चला जाएगा, और एक हटा दो लाख जीरो रखो तो इसका कोई मूल्य नहीं। इसलिए विभूतियों का भजन करने से, लाख विभूतियों का भजन करो और एक रूपी भगवान को हटा दो, कृष्ण को हटा दो तो जीरो हो जाएगा। ये थ्योरी है शास्त्रों की। इसलिए इसी को समझ करके यदि भगवान का भजन करते हुए समस्त प्राणियों का आदर करो तो वो तो बहुत अच्छा है, और सब प्राणियों को आदर करो, देवताओं का आदर करो और कृष्ण को उसमें से हटा दो तो सब कुछ जीरो रह जाएगा। तो इस तरह से भगवान का भजन नहीं करने से हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं। इसलिए जब तक हम भगवान से नहीं मिलेंगे, कैसे नहीं मिलेंगे या कैसे मिलेंगे, जैसे यहां पर हम 50 आदमी मिले हैं, 100 आदमी मिले हैं और 10 आदमी मिल जाएंगे तो हम 50 ही नहीं रहेंगे, आदमी बढ़ते जाएंगे। उसी प्रकार से एक और एक, एक नहीं होगा दो होगा, एक प्लस 50 51 हो जाएगा। भगवान के साथ में मिलकर के कभी कोई एक नहीं हो जाता, एक नाम की कोई चीज नहीं है, ए और क दो अक्षर मिलकर के एक बना, ओ एन ई तीन अक्षर मिलकर के एक बना, एक रेखा ऐसे खींच दो इसमें लॉक डॉट्स मिलकर के एक रेखा बनी। एक है कहां? एक आदमी, एक आदमी की दो आंख, दो नाक, कान, पैर, हाथ, एक कहां रहा? इसलिए एकाई में बहुत बहुत समय एकाई अर्थात यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन यूनिटी। भगवान सारे विश्व को मिला करके, सारे जीवों को मिला करके, वर्ल्ड को मिला करके, सारे एक एक जीव को मिला करके, और तब ये भगवत शब्द निकला है। अमेरिका एक राष्ट्र है, इसमें एक प्रेसिडेंट है, मंत्रिमंडल है 50-60, इस देश में रहने वाले लाखों आदमी हैं, करोड़ों आदमी हैं, करोड़ों प्रदेश हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, ये सब मिला करके एक अमेरिका। अमेरिका एक जीरो नहीं, उस तरह से भगवान एक जीरो नहीं, बड़ा उसमें प्रेम है अद्भुत, बड़ा कृपालु है, बड़ा सुंदर है, अद्भुत है। वो है भगवान की यूनिटी कृष्ण में, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान। जब तक जीव भगवान का स्मरण नहीं करेगा, लाख देवताओं की उपासना करने पर भी सुखी नहीं रह सकता, समस्त जीवों के ऊपर दयालु होने पर भी, लाख दान करने पर भी, यज्ञ लाख जान यज्ञ करे तभी सुखी नहीं रह सकता है, जब तक वो भगवान का स्मरण न करे। स्मरण करने में लगता क्या है? सवेरे उठो, राम राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।
कदे इसमें क्या लगा, पैसा खर्च हुआ। भक्ति में पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, ये तो हृदय की वृत्ति है, किंतु ये समझ लो कि आत्मा की वृत्ति है, शरीर नहीं, हम शरीर नहीं है, पहली थ्योरी ये। इसलिए गीता हमारा पहला ग्रंथ है जो हमारे प्लेटफॉर्म को बनाता है भजन का। गीता नहीं जिस समझने से हम नहीं समझेंगे कि यह शरीर हम नहीं है, हम बड़े सुंदर हैं। क्या सुंदर है ये तो आग लग जाएगी, आग में जला दिया जाएगा, मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा, कीड़े बन जाएंगे, आग में जल जाएगा, राख बन जाएगा, कहाँ सुंदर रहा है? इसका मूल्य नहीं, दो दस दिन ये सुंदर है, इसके बाद में इसको थोड़ा सा हटा दो, नाक का थोड़ा सा चमड़ा हटा दो, फिर उस लड़की की शादी नहीं होगी, बड़ी सुंदरी थी, कोई नहीं कहे नक कट्टी है, कोई भी सुंदर से सुंदर हो, एक सफेद सा यहाँ दाग हो जाए, यहाँ दाग हो जाए, कोई नहीं विवाह करेगा, यही तो सौंदर्य है। कृष्ण बड़े सुंदर है, इसलिए सहज सरल रूप में कुछ नहीं होता, एक बार सवेरे भी उठ करके मैं तुम्हारा हूं, हे प्रभु मैं तुम्हारा, ये कहने में क्या लगता है, हरे कृष्ण कहने में क्या लगता है, दिन में न हो, रात में हो, सवेरे हो, शाम को हो, जब कभी हो, पैसा कौड़ी स्नान करो मत करो कोई भी बात नहीं है, तुम स्नान करके पवित्र नहीं होता, लाख बार स्नान करो किंतु भीतर से टट्टी और पैखाना ये सब जाएगा कहां, सबसे बड़ी हमारी बुरी जो भावनाएं हृदय में है वो कहां जाएंगी, लाख स्नान करो साबुन लगाओ बुरी भावनाएं तो कहीं नहीं जाएंगी, कपटी दंभी और सब कितने प्रकार के अवगुण है, दूसरों को ठगना लूटना मारना ये सब कहां जाएगा, स्नान करने से जाएगा, ये भगवान नाम के द्वारा ही जाएगा। इसलिए बतलाया गया हरे नाम अव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति रहता। इसलिए इतना जो बतलाया इसका ये परपट ये है, हम लोग शरीर नहीं है पहली बात याद रखिए, दूसरी बात हम जो सोचते हैं मन से वो मन भी हम नहीं है, हम भगवान के पार्ट पार्श्व आत्मा है, हम उनके इटर्नल सर्वेंट हैं, हम उनके नित्य सेवक हैं। संसार का सब नाता टूट जाएगा किंतु ये नाता कभी नहीं टूटेगा, तुम भूल जाने से भी वो नाता रहेगा। इसलिए यदि सुखी शांति रहना चाहते हो तो समस्त अवस्थाओं में भगवान का स्मरण करो, इसमें पैसे रुपए धनी अमीर गरीब बुढ़ापा जुआ मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन ईसाई इत्यादि का कोई प्रश्न नहीं, अपने स्थान में जो जहां है वहीं रह करके भगवान का नाम कर सकता है, बूढ़ा आदमी ले सकता है, स्त्री ले सकती है, छोटे बच्चे ले सकते हैं, यहां तक कि जो पशु पक्षी कीट पतंग घास पेड़ पौधे यदि सुनते हैं इस नाम को उनमें भी भगवान की कृपा संचरित हो जाती है, वो भी शरीर को छोड़कर एक मनुष्य होकर के साधन भजन करके भगवान के पास में चले जाते हैं, फिर उनका जन्म मरण नहीं होगा निश्चित रूप में है। इसलिए श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी जी एक नंगे लड़के उम्र 16 वर्ष की कोई कपड़ा नहीं पहने उनके पास में कोई भी द्रव्य नहीं है, और दूसरी तरफ में परीक्षित महाराज जी विश्व के सम्राट थे, काफी उनकी बड़ी सेनाएं हैं, सोने के अलंकारों से भरे हुए हैं, पैर में जूते हैं, सिर पर छत्र है, लाखों उनके चारों तरफ में घूमने वाले पहरेदार उनके पास में हैं, सुंदर स्त्री है, उनकी स्त्री का नाम परीक्षित महाराज जी का उत्तरा माँ थी, हाँ जन्मे जय, और उनकी मैया पत्नी भी थी बड़ी सुंदरी, और राजा खूब बलवान, युवावस्था में एक ऋषि ने उनको श्राप दे दिया, 7 दिन के अंदर में सांप आएगा तुम्हें काटेगा, कोई रक्षा नहीं कर सकेगा, और हुआ यही, उन्होंने संसार से धराग्य ले लिया और गंगा के किनारे पहुंचकर
सोचने लगे मुझे क्या करना चाहिए। और इतने में विश्व के जितने भी माने हुए उस समय में साधु संत थे, जो रियलाइज तो ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी भक्त, वो वशिष्ठ जी, नारद जी, सुखदेव गोस्वामी और गौतम कवि हवि अंतरिक्ष इत्यादि सभी लोग पहुंच गए। छोटा सा बच्चा 16 वर्ष का नंगा आया और उस पर पत्थर बच्चे डाल रहे थे, स्त्रियां धूल झोंक रही और वो चुपचाप खड़ी गंभीर से भगवान का स्मरण करते हुए आया। नारद जी ने देखा, प्यास ने देखा और सब परीक्षित महाराज जी उठ करके खड़े हो गए, अभिवादन किया। 88,000 लोग थे, सब लोगों ने उठ करके अभिवादन करके उसको बीच में ऊंचे स्थान पर बैठा दिया। और सुखदेव गोस्वामी जी पूछने लगे, सुखदेव गोस्वामी से वो पूछने लगे परीक्षित महाराज, महाराज हमारे दो प्रश्न हैं, जो आज मर जाने वाला है उसको क्या करना चाहिए, और जो आज न कल न परसों न बरसों मरेगा जरूर, उसके लिए क्या करना उचित। तब उन्होंने कहा, सभी पुंसांग परो धर्मो युतो भक्ति रथोक्षदे अहेतुक का प्रतिहता जयात्मा संप्रसीदति। प्राणी मात्र का, जीव मात्र का कर्तव्य है जहां वो है वहीं से भगवान का स्मरण करे, उनके चरणों में ऐसी प्रेममयी भक्ति हो, तैल धारावत अवच्छिन्न गति से रहे, जैसे ऊपर से मधु गिराते हैं उसका तार नीचे तक एक रहता है, वैसे भगवान के चरणों में अहेतुकी और अव्यवहिता टूटने वाली ना हो बीच में, तैल धारावत एक अविच्छिन्न गति से भगवान के चरणों में यदि लगे, इससे बढ़कर के किसी का कल्याण, इसी से आत्मा प्रसन्न हो सकती है, ये उत्तमा भक्ति है, भगवान के चरणों में प्रेम है। अभी आप किसी से संसार से प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम पत्नी से करते हैं, किंतु बुढ़ापा होने पर या तो पति या पत्नी पहले तो जाएगी, मरेगी तो उस समय में एक साथ में नहीं जाएंगे, वो कहाँ जाएगी, वो वहां कोई गारंटी है, कोई गारंटी, वो कहाँ जाएगी, ये कहाँ जाएंगे, बेटे कहाँ जाएंगे, कोई भी कोई ठीक, समय के प्रवाह से जैसे बाढ़ में बहुत सी मिट्टी एक जगह मिल करके टापू बन जाती है और वो टापू कट करके फिर छिन्न भिन्न होकर के कहाँ चला जाता है, इसलिए यदि सुखी रहना चाहते हैं तो भगवान का भजन करें, उसे कोई संबंध जोड़े, ये हमारा है कृष्ण, हमारा ये है, हमारा भैया है, हमारा मित्र है, हमारा सखा है, हमारा प्रभु है, हमारा प्यारा प्रियतम पति है, उनमें से कोई एक संबंध जोड़ना है, संबंध के ऊपर में सारी चीजें ठीक रहती हैं। यदि पत्नी हमारी है तो पत्नी पति के रूप में उसकी सेवा करेगी और पति भी उसे पत्नी के रूप में रखेगा, मैया नहीं, मैया को पत्नी नहीं बनाएगा, मैया के रूप में उसकी सेवा करेगा, पुत्र होगा तो पुत्र के रूप में, उसे पिता के रूप में नहीं, जिसके साथ में जैसा संबंध है उसी के ऊपर में उसकी सेवा निर्भर रहती है। जिससे संबंध नहीं है, पत्नी के लिए लाख रुपया खर्च करते हैं बेटे के लिए, और एक बाहरी आदमी जिसे संबंध नहीं उसके लिए एक पैसा भी नहीं खर्च करेंगे, नहीं करेंगे। इसलिए कृष्ण से संबंध जोड़ो, कोई वो संबंध को मान लेते हैं, संबंध है आत्मा में, ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसके साथ में उनका कोई रिलेशन नहीं है, किसी न किसी प्रकार से ये संबंध है, और ऐसा मान करके भगवान, ये काल्पनिक नहीं होगा। भरत जी एक हिरणी को प्यार कर रहे थे, बच्चे को, तो दूसरे जन्म में हिरणी बन गए, हिरण बन गए, वैसे भगवान की कोई चिंतन करते करते उनके भक्तों का, भगवान का भक्त होकर के नित्य काल के लिए उनकी सेवा को प्राप्त करेगा, ये थ्योरी है। मरने के समय में जैसा आदमी चिंतन करेगा वैसा ही दूसरा जन्म जरूर होगा। आप स्त्री की चिंता करें, स्त्री की चिंता करते 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 यदि मरेंगे तो स्त्री बनकर के आना पड़ेगा, जरूर नहीं है कि पुरुषों में, और कोई पत्नी पुरुष की चिंता करते करते में तो पुरुष हो जाएगा। एक आदमी बहुत ही हिंसुक है, हिंसा समझते हैं ना, बाघ जैसा, बहुत क्रोधी बनता रहता है सब समय, वो बाघ या सांप का जन्म लेगा, जरूर लेगा ही। जो मनुष्य जैसा व्यवहार सबके प्रति प्रति उदारता पूर्वक रहेगा वो मनुष्य जन्म लेगा और भगवान का भजन का सुयोग प्राप्त कर सकता है। और बड़े बड़े धनी आदमी बहुत हिंसु चोर बदमाश रहेंगे, सब समय मदिरा पान करेंगे तो वृक्ष होकर के जन्म करेंगे। इसलिए अच्छे कर्म किए जाए, भगवान का चिंतन किया जाए। भगवान ये देखते हैं कि जीवन में भगवान का भजन नहीं करने से कोई सुखी नहीं है। संक्षेप में आप लोगों को बतला, एक कीर्तन कीजिए। तो गोचारण करने के लिए जा रहे थे, साथ में गायें थी और हजारों हजारों गोप बालक थे, उनके सखा थे। गोचारण करते करते वो भांडीर वन एक है वृंदावन में यमुना के किनारे, वहां पर उपस्थित हुए। गायें चर रही थी, यमुना में पानी पिया और नई नई घासें देखकर हरी हरी सोचा कि यहां से वहां की घास अच्छी है, बढ़ती गई और बढ़ते 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 एक ऐसे जंगल में पहुंची जहां केवल बालू ही बालू था, सरखंडे जमे हुए थे, घास बड़ी ऊंची ऊंची। उसके अंदर से प्रवेश करके यमुना के किनारे ऐसी रेतीली जमीन, केवल बालू ही बालू, बहुत ही गर्मी का मौसम, सूरज तप रहा था, जमीन भी तवे के समान जल रही थी, चिलचिलाती हुई धूप। गायें उसके अंदर में आ गई, गायों का हृदय सूख गया प्यास के मारे। और इसी समय बच्चों ने देखा ये गायें कहाँ गई, तो उन्होंने कृष्ण को नहीं पूछा ये कहाँ गई। वो भी अपने गायों को खोजते हुए खोजते खोजते उसी जंगल में मरुभूमि में पहुंचे। इतने में कंस के दूतों ने देखा ये अच्छा मौका है, ये बच्चे मर जाएंगे दुख से, कृष्ण भी मर जाएगा। बस आग लगा दी, हवा चलने लगी और आग मिनटों में चारों तरफ में फैल गई, चारों तरफ में आग जलने लगी। गाय और बच्चे गोपाल बालक देखा जी अब तो मरना है, अब क्या किया जाए, आंख बंद कर दिया। हे कृष्ण हमारी रक्षा करो। उसी समय में झट कृष्ण और बलदेव जो थे दूर में भंडीर बन गए, झट वहां पर प्रकट हो गए। जल्दी से अपनी आंखों को बंद करो, उन्होंने बंद कर लिया। साथ ही साथ अरे आंख खोलो, आंख खोला, देखा न तो आग है न वो वन है, भांडीर वन की सुशीतल छाया में यमुना के किनारे वो गायें बैठी हैं और सखा लोग बैठ करके भोजन कर रहे हैं। बस ये देखा, सोचा अरे हम लोग स्वप्न देखा या क्या देखा। ये तात्पर्य है गाय हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां 11 हैं, पांच कर्म इंद्रियां और पांच ज्ञान इंद्रियां, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा, ये ज्ञान इंद्रियां, इसके सहारे हम ज्ञान लेते हैं। क्या अच्छा सुंदर खराब है ये देखते हैं आंखों से, कानों से शब्द सुनते हैं, जीवा से रस का स्वादन करते हैं, चमड़ों से गर्मी सर्दी इत्यादि देखते हैं, पैर से चलते हैं, हाथ से काम करते हैं इत्यादि, मन उसके ऊपर में एक और। ये गाय है गो माने इंद्रियां, चरते क्या है जैसे गाय घास चरती है, इंद्रियां जहां सुंदर सौंदर्य है उसका काम करती हैं आंखें, अच्छे अच्छे सुंदर रोचक शब्द हम सुनते हैं, यहाँ पेट नहीं भरता है तो सिनेमाओं में जाते हैं, स्टारों के जो क्या कहलाती हैं एक्ट्रेसों की बड़ी कोमल मधुर मधुर
संगीत श्रवण करते हैं, और जो कर्कश बोलती है अपनी पत्नी तो उसको भी छोड़ देते उसकी बात नाक थोड़ी सी टेढ़ी है ये नहीं देखें ये भीतर से कितनी सेवा करती है, ये काली है कि गोरी है, काला गोरे से तुम्हें क्या मतलब, सेवा की वृत्ति प्रेम की देखो वो नहीं देखते, बहुत सेवा करने वाली भी उसको छोड़ देने, ये सब काम इंद्रियों का है। तो ये चरना है विषयों का, हम ये सब चाहते हैं, इसी से सुखी होना चाहते हैं। घासें गायें चरती हैं, देखती यहां से वहां अच्छा घास है तो वहां चली जाती है, तो गाय ऐसे ही चरते चरते, अतः तो हम लोग जन्म जन्मांतरों से विषय रूपी घास को ग्रहण कर रहे हैं। इसके पहले भी हम स्त्री पुरुष थे किसी रूप में, हूं वहां पर भी ऐसा ही किया, जन्म लिया, बड़े हुए, विवाह शादी की, विवाह नहीं है तो बकरियों का भेड़ों की शादी कोई कराता है या अपने आप होती है, कोई कराता है, अपने आप करते हैं सब, गाय में और बैलों में कभी विवाह कोई कराता है, ये तो स्वाभाविक है, जहां रहेंगे वहां पर बच्चे होंगे, चाहे वो पेड़ हो पौधे हो उनमें भी प्रेम है, वो ऐसे ही पेड़ से पेड़ नहीं हो जाता और फल नहीं लगते हैं, वो भी परस्पर किसी न किसी रूप में हवा के झोंकों से किसी प्रकार से टहनियों से वो परस्पर मिलते हैं। एक भारतवर्ष में घास है उसको लज्जावती कहते हैं, छू दो तो वो सबसे आ जाती है और फिर इसके बाद में फिर ऐसे हो जाती है, उनमें भी विचार है, उसमें भी प्रेम है, आदान प्रदान है। तो जो लोग सारे जीवन में विषयों से अपने इंद्रियों से विषय भोग करने की चेष्टा करते हैं वो सुखी नहीं रह सकते। गायें जो सब समय कृष्ण के पास में रहती थी आज उनको छोड़ करके चली गई और आग में जलने लगी, सखा लोग भी कृष्ण को छोड़ करके वहां गए, पूछा नहीं ये कहां गायें गई, और गए वो लोग भी जलने लगे, किंतु आंख बंद करके जब पुकारा, वैसे यदि हम उनको पुकारें कृष्ण को, हे प्रभु हम जल रहे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूर सरो नको, आंख बंद करके हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरण, सबको छोड़ करके प्रभु का शरण लो, और देखो जितनी विपत्तियां हैं सभी शांत हो जाएंगी, सभी जरूर शांत हो जाएंगी, जन्म का होना मरण सब कुछ शांत एकदम हो जाएगा, आप सुखी हो, आत्मा का रियलाइजेशन है, आत्मा की अनुभूति होगी, भगवान प्रभु का दर्शन हो जाएगा, फिर जगत में ही जगत में नहीं आना पड़ेगा, हमारा ओरिजिन कहाँ है, बैक टू होम एंड बैक टू गॉड, बैक टू गॉड एंड बैक टू होम, भगवान के पास में जाना है, इससे लाखों गुना वो बड़ा है, वहां जन्म मरण नहीं है, केवल प्रेम ही प्रेम है, वहां संगीत ही है, सब बोलना संगीत है, वहां पर सब समय मृत बरसता है, वहां पर कोई दुख नाम की छाया नहीं, बुढ़ापा नहीं, मरण नहीं, यहां पर जैसे हम मरने के बाद में शरीर छोड़ देते हैं वहां नहीं, वहां पर नित्य अपना शरीर है, बच्चों को कहा जैसे आंख बंद कर दो, किस लिए, यशोदा मैया यदि सुनेगी ये आग खा लिया तो हमें डांटेगी फटकारेगी, एक बार मिट्टी खाया तो हमको डांटा फटकारा, और बच्चे देखेंगे ये आग खा रहा है तो बच्चे पहले ही मर जाएंगे, इसलिए अपने लीला को ठीक रखने के लिए उन्हें आंख बंद कर दो। कृष्ण ने बच्चों ने समझा ये कृष्ण कोई मंत्र जानता है, भगवान के रूप में नहीं समझा, मंत्र जानता, भी कोई मंत्र पढ़ेगा दूसरे के सामने दिखा करके मंत्र नहीं होना चाहिए, चुपचाप होना चाहिए, ऐसे ये कुछ करेगा, और कृष्ण ने हाथ ऐसा किया और सारी आग उसके शरीर में सुशीतल होकर के प्रवेश कर दी। इसलिए दुख में सुख में भगवान का स्मरण करो, सभी जीवन में सुखी रह सकते हैं। कल हम लोग इसके बाद में सुंदर कृष्ण की कथा सुनाएंगे, तत्व की भी बातें बतलाएंगे, आज यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं, अंग्रेजी में थोड़ा सा बतला दो।